morning, everyone.
Good morning.
Well, I'd like to share about the Israelites, especially a time during when they were in Egypt, and when they went out of Egypt, how God was with them, although they were going through a lot of trials and difficulties in their life.
और मैं आपको आज इस्राएलियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे इस्राएली लोग मिस्र के अंदर थे और कैसे वो वहाँ से बाहर निकले और कैसे वो बहुत सारी समस्याओं में से परीक्षाओं से होकर उस मरुभूमि के उस सफर से वो गुजरे.
So, title I would say is like trusting God during difficulties or during storms in our life.
और मैं इस शीर्षक ये देना चाहूंगा कि हमारे तकलीफ या हमारे तूफानों के जीवन में जीवन के सफर के अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना.
Right. So it's a very familiar verse in the Bible wherein most of us know the story of the Israelites. It starts from Exodus. If you look at Exodus chapter 4.
और निर्गमन 4 के अध्याय के अंदर इस कहानी को हम पढ़ते हैं जो बहुत सारे हम में से इस वचन को जानते हैं.
Verse 29 to 31, if you look at it.
उसके 29 वचन से आगे निर्गमन उसका 4 अध्याय 29 से.
So here, a few verses before, God actually chooses Moses and he wants Moses to go and deliver the Israelites from the Pharaoh.
और इस वचन के पहले भाग के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को चुनता है ताकि वो इस्राएलियों को मिस्र का जो राजा फिरौन है उसके हाथ से छुड़ाकर उनको वहां से बाहर निकाले.
So here, if you look at Exodus verse 29 and 29 to 31 says. Then Moses and Aaron went and assembled all the elders of the sons of Israel, and Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. He performed the signs in the sight of people, so the people believed when they heard that the Lord was concerned about the sons of Israel and that he had seen their affliction. They then bowed low and worshipped.
और निर्गमन 4:29 से आगे तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया.
Tell the Pharaoh that my people should be set free.
और यदि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया है कि तू जाकर फिरौन को कह कि परमेश्वर ने मेरे लोगों को तू जाने दे यहाँ से छुटकारा दे उनको.
So, ideally we will think that it's easy. It should be an easy way. God has told and it should be easy.
तो आप सोच सकते हैं यदि परमेश्वर ने वो कहने के लिए कहा मूसा को तो बहुत ही आसान मार्ग होना चाहिए था.
But when we read the further chapters, we see how when we read further, we see how. Although God has commanded it to Moses and Moses and Aaron went to the Pharaoh. And
यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि कैसे आगे के हर एक अध्याय के अंदर यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी फिर भी मूसा और हारून जो है वो बार बार कैसी बातों का सामना करते हैं.
So here Moses first went to the, if you read Exodus chapter 5 verses 1 and 2.
और निर्गमन 5 अध्याय का 1 और 2 वचन यदि हम पढ़ते हैं.
So we see that afterward Moses and Aaron came and said to Pharaoh, "Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go that they may celebrate a feast to me in the wilderness." But Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and besides, I will not let Israel go."
और इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को भी ना जाने दूंगा.
Even before Moses and Aaron went to the Pharaoh, God had already spoken to Moses and told him that I will make the Pharaoh arrogant and I will harden his heart and he will not let the people go so easily.
और इससे कि पहले जो हारून और मूसा जो है वो फिरौन के सामने जाते परमेश्वर ने पहले ही मूसा से कह दिया था कि मैं उसके मन को बहुत ही कठोर कर दूंगा.
So now that the Pharaoh got to know that there's someone who's asking people to let go, God of Israel is asking to let go his people, he said no, these guys have a lot of time that they have and they are praying to their God for deliverance, they are lazy, let me go ahead and increase their workload.
और जैसे उसको फिरौन को पता चलता है कि ये मेरे पास आकर यहाँ से जाने की वो विनती कर रहे हैं, और उसको पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर आलसी हो गए, बहुत समय से यहाँ पर है, वो कहता है कि उनके बोझ को, उनके जो काम है उनको और भी अधिक मैं निर्दयी रीति से बढ़ा देता हूँ.
So further down in Exodus chapter 5 we read from verse 7 onwards.
और वही पांच अध्याय के सात वचन से आगे हम पढ़ते हैं.
Sorry, verse 6.
छह वचन से आगे.
So the same day Pharaoh commanded the taskmasters over the people and their foremen saying, You are no longer to give the people straw to make brick as previously. Let them go and gather the straw for themselves. But the quota of bricks which they are making previously, you shall impose on them. You are not to reduce any of it because they are lazy. Therefore they cry out, let us go and sacrifice to our God.
और यहाँ पे वो कहता है फिरौन उस दिन उन परिश्रम करने वालों को जिन लोगों के ऊपर थे उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, व्यापी जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करे.
Yeah, and in verse 9 we see he also mentioned let the labor be heavier on the men and let them work at it so that they will pay no attention to false words.
और नौ वचन में लिखा है उस मनुष्य से और भी कठिन सेवकाई करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए.
So Pharaoh had believed firmly that what this guy, you know, what Moses is coming and speaking to him is just false. It's just, you know, some guy is coming up and saying, letting the people go, he's just talking foolish things.
और निश्चय रूप से फिरौन यहाँ पर कहता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये मुझसे आकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे लोगों को यहाँ पे जाने दे, तो वो उसको झूठी बात मानता है कि वो यहाँ पर इस तरह से वो नहीं जा सकते उनके.
Now, as per the instructions given by the foreman, given to the foreman stopped the supplies of the Israelites and he ensured that they supply the same amount of bricks but the grass was not given to them.
aur jaise unko jo wahan pe poal diya karte the eent banane ke liye jo unko samagri ki zarurat padti thi ab wo samagri unko nahi diya karte the lekin utni hi eente abhi unko banani hai jo pehle banani thi.
And they complained, they said, you know, you are asking us to make the same amount of bricks but then you're not giving us the supplies that we need. How do we do that?
aur wo fir wahan pe shikayat karne lage ki jitna humko banana hai utna banane ke liye tum hame wo samagri nahi de rahe ho.
They even went to the Pharaoh and asked, told him about this, but the Pharaoh said, nothing doing, you're not going to get anything, you have to find the supplies on your own but still deliver the same amount of bricks.
वही लोग जाके फिरौन से भी कहते हैं कि हमको ये पुआल या जो सामग्री की जरूरत है वो दे, लेकिन वो सुनता नहीं, कहता है कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने आप से तुमको ये जो सामग्री इसको ढूंढना है, उतनी ही ईंटों को तुमको बनाना है.
So, you know, the last chapter we read how the people believed Moses and Aaron when they came and spoke to them and showed some signs and miracles and they believed that okay, God is with him and we should listen to them.
aur pichle adhyay mein jaise dekhte ki kaise Musa aur Harun ki baatein logon ne suni aur kaise chinh chamatkar wahan par hui.
So when, you know, they were encountered with a small difficulty in their life
aur jise unke jeevan ke andar choti si samasya ka samna wo karte hain
and they felt that hey, you know, this God was supposed to deliver us from the Israelites and, you know, we are getting into more into trouble.
और जैसे यहाँ पे परमेश्वर तो हमें मिस्री के हाथ से हमको छुड़ाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद तो हम लोग और भी समस्या में गिर रहे हैं.
He is supposed to be an all-powerful God, but you know, we are getting more into trouble. We've been given more work and not given the supplies.
और वो तो सर्व सामर्थी परमेश्वर हमको उसमें से बाहर निकालना चाहे, लेकिन हमारा काम और भी बढ़ते जा रहा है.
So they went and complained to Moses and Aaron. If we read in verses Exodus chapter 5. Verse 20 onwards, they say, when they left Pharaoh's presence, they met Moses and Aaron as they were waiting for them. They said to them, may the Lord look upon you and judge you, for you have made us odious in Pharaoh's sight and in the sight of his servants, to put a sword in their hand to kill us. Then Moses returned to the Lord and said, O Lord, why have you brought harm to this people? Why did you ever send me? Ever since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done harm to his people and you have not delivered your people at all.
और यहाँ पे देखते हैं जो लोग हैं वो वहाँ से राजा के सामने निकल के फिर पांच अध्याय के 20 वचन से 21 वचन से आगे मूसा और हारून से कहते हैं, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवारें दे दी है.
So we see that here the people were distressed, they were greatly distressed because they were not expecting, you know, a response from the Pharaoh like this, wherein their work is increased and they are not, you know, There's no relief for them.
और यहाँ पर देखते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल भी राहत में नहीं है, उनके उनके अंदर एक बहुत एक विश्राम नहीं है और बहुत ही तकलीफ में वहाँ पर है क्योंकि उनका काम और भी बढ़ा दिया गया है.
In the next chapter, after Moses prayed to the Lord about this, God promises to take action on this.
और जैसे मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनसे वादा करता है कि वो इसके ऊपर कार्य जरूर करेगा.
So we see in Exodus chapter 6,
और छह अध्याय में हम देखते हैं,
where God is promising that I will deliver you Israel from my people from Egypt.
और वो कहता है मैं इसराइलियों को मेरे लोगों को उस मिस्र से जरूर छुड़ाऊंगा.
So here if we read in verse verse 10 onwards.
उसके छह अध्याय के दस वचन से आगे.
Now the Lord spoke to Moses saying, "Go tell Pharaoh, king of Egypt, to let the son of Israel go out of his land." But Moses spoke before the Lord saying, "Behold, the son of Israel have not listened to me. How then will the Pharaoh listen to me? For I am unskilled in speech."
और वहाँ पे वो कहते, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह, इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे. परंतु मूसा ने कहा, देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले से कैसे सुनेगा.
So Moses and Aaron, they recognize that the people, our own people whom we were going to deliver from Egypt, they themselves don't have any confidence in us. They don't believe that God is able to deliver it. How then can we can go ahead and speak to a Pharaoh who's the ruler of the place.
और मूसा यहाँ पे आगे बढ़कर परमेश्वर से कहता है कि जिन लोगों के पास तूने हमें भेजा है कि उनको हम छुड़ाए, वो लोग ही हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो कैसे मैं जाकर फिरौन से कहूँ और हम यहाँ से छुड़ाए जाएंगे.
So we see that in verse 13, the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them a charge to the sons of Israel and to Pharaoh, king of Egypt, to bring the sons of Israel out of the land of Egypt.
और यहाँ पे यहोवा फिर एक बार मूसा और हारून से बात करता है, उनके अभिप्राय से आज्ञा देता है कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले आए.
When we read further, this is like the beginning of the place where God, the plagues, there are 10 plagues which God sends on Egypt.
और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे तीन प्रकार की बड़ी बड़ी यहाँ पे जो विपत्तियां है परमेश्वर मिस्र के ऊपर डालते हैं उनको छुड़ाने के लिए इसराइलियों को.
Around 10 plagues. So the first one is blood, where we can read in Exodus chapter 7 verse 14 to 24.
और 14 वचन, 7 अध्याय के 14 वचन से देखते हैं कि जल का लहू बनना जो होता है वो वहां देखते हैं.
Then he punished them with frogs all over the place. We see that in Exodus chapter 7 verse 25 to the next verse chapter 18:8-15.
और फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि विपत्ति वो मेढकों का आक्रमण वहां पर देखते हैं.
And so on. So God was trying to giving them one test after the other, and but the Pharaoh was so adamant and so determined that no, I'm not going to let these guys go.
और एक के बाद ऐसी बहुत सारी विपत्तियां वहां पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका मन इतना कठोर है, वो अंदर से निश्चय कर लेता है कि मैं इन लोगों को यहां से नहीं जाने दूंगा.
So during some trials he promised that hey, pray to your God and ask him to let this trial get over and I promise to let your people go.
और जब विपत्ति आती थी तब वो बहुत ही विनती करता था कि इस विपत्ति को परमेश्वर से प्रार्थना करके निकाल दीजिए, तब मैं जाने दूंगा.
But once the test is once the plague is over, he changes his mind.
और जब वो विपत्ति खत्म हो जाती थी फिर उसका मन बदल जाता था फिरौन का.
And this happened many times.
और ये बहुत बार ऐसा हुआ.
So we see here in Exodus chapter 11 verse 1 to 10, the last plague.
और यहाँ पे देखते हैं निर्गमन 11 अध्याय के अंदर जो पहलोटे की मृत्यु होने वाला जो वहां पर हम देखते हैं.
Right. So here the firstborn of everyone in Egypt, like the, from the king to the all the Egyptians, died in that last plague.
और वो जो अंतिम जो विपत्ति वहां पर डाली गई उसके अंदर पहलोटा जो था, वो राजा हो या फिर हर एक मिस्री लोग है, उनका पहलोटा जो है उसकी मृत्यु होनी.
They've had enough of all this because they've been Egypt was going through a lot of trouble because they were not listening and the king was very stubborn and he said, this is it, this is enough, take your people away, let them go.
और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वो बहुत सारे ऐसे उनके लोगों ने विपत्तियां को देखा, फिर राजा बोलता है कि अब यहाँ से तू जाने दे.
So even after the Pharaoh allowed those people to go and they left Egypt, we see that again Pharaoh was not happy. And he, in verse 14, we see that how Pharaoh wants to go ahead and pursue Israel and capture them.
और उसके बाद जब उनको जाने की अनुमति देने के बाद भी वो वहां पे अपने मन को बदल देता है, फिर अपनी सेना के साथ उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है.
सो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम द पीपल ऑफ इजराइल हैव सीन, यू नो, विद देयर आइज दे हैव सीन, दे हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रबल दैट इजिप्ट हैज गॉन थ्रू एंड व्हाट गॉड हैज डन to deliver them, you know, from the hands of the Egyptians.
और इस सारे समय के दरमियान इसराइलियों ने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग विपत्ति मिस्री के ऊपर डाली और कैसे इन बड़े चमत्कारों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा इन इसराइलियों को वहां से बाहर निकाला.
So there are times when in our lives also when we face certain difficulties, certain challenges in our life, maybe, you know, some trouble with our health or maybe loss of a job. Or some issues with our families.
और हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, या हमारे स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, या हमारे जॉब के संबंधित कोई ऐसी समस्या का हम सामना करते हो.
At that point of time, we only see what is happening in our life. At that point of time, we don't think back what God has, where God has led us from, and what all God has done in our life. What miracles.
उस समय में हम केवल हमारी वर्तमान हालातों के ऊपर ही देखते हैं. हम बहुत जल्दी भूल जाते कैसे परमेश्वर हमें भूतकाल में यहाँ तक लेकर आए, कैसे उसने हमें अगुवाई की है यहाँ तक.
So again, it's Exodus chapter 14.
Nirgaman uska 14th adhyay.
Right. So when this is like the end of when the Egyptians were pursuing Israel and they came near the Red Sea.
और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्रियों जी हुए, मिस्री लोग इस्राएलियों के पीछा करते हुए लाल समुद्र तक पहुँच जाते हैं.
So again, the children of Israel complained to Aaron and Moses, saying that you know, why did you bring us here? Were there not enough graves in Egypt that you brought us here to die?
और उनको पीछे आते हुए देखते जो इसराइली लोग हैं और भी कुड़कुड़ाते हैं हारून और मूसा के सामने के मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी कि तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया.
But Moses had faith that no matter what has happened, it looks like an impossible situation. People, a huge crowd whom you've been assigned, and they don't have faith in you, but God will still deliver.
और मूसा जो है, लेकिन फिर भी मूसा के अंदर एक विश्वास था, यहाँ तक कि लोग समझ नहीं रहे उनको, उसको नहीं समझ रहे, परिस्थिति ऐसे हालात है, लेकिन फिर भी उसके विश्वास की परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा.
So we see that in Exodus chapter 14 verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea and the Lord swept the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into a dry land. So the waters were divided, the sons of Israel went through the midst of the sea on dry land. And the waters were like a wall to them on their right hand and on their left.
और निर्गमन 14:21 में पढ़ते तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई.
Nobody has seen this before. Nobody has heard about it before. We can all, when we read the Bible, we can all read it as a good story.
हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम वचन में इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं.
सो इन आवर लाइव्स व्हेन वी एनकाउंटर डिफिकल्टीज एंड ट्रायल्स, डू वी रियली बिलीव दैट अ गॉड हु हैज वर्कड, यू नो, सो मेनी मिरेकल्स एंड शोन हाउ हिज पीपल, यू नो, कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम इजिप्ट, डज दैट गॉड इवन स्टिल, यू नो, इज ही अलाइव, कैन ही डू मिरेकल्स इवन नाउ?
और जो परमेश्वर जब हमारे जीवन के हालातों में भी बहुत कठिन या ऐसी परिस्थितियों का सामना जब हम करते, क्या हम विश्वास करते कि परमेश्वर जिसने मिस्रियों के हाथ में से इसराइलियों को छुड़ाया, बड़े बड़े चमत्कार किए, वो हमारे लिए भी ऐसे चमत्कार या कार्य करेगा?
Often we only look at the situation which we see in front of us and, you know, sometimes it's a very overwhelming situation and we may not see an answer for that situation immediately and we may expect that if you are praying to God, we may want an answer immediately.
और कई बार होता है कि हमारी वर्तमान हालात जो होते हैं उसी के ऊपर हमारी नजरें होती है, हमें नहीं समझ आता है, उसमें कोई हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है प्रार्थना करने के बावजूद भी.
So I've been going through a season of my life for the last 3-4 years wherein it's been a very difficult patch for me.
और मेरे जीवन के पिछले 3 और 4 साल से बहुत ही ऐसे कठिन हालातों से मैं गुजरा हूँ, बहुत ही कठिन समय वो रहा.
And I felt like giving up many times.
और बहुत बार मैंने सोचा कि मैं हार मान लूं.
A lot of people told me, hey, you should not fight, you should just give up, you know, this.
और बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें लड़ाई नहीं लड़ना है, बस इसको हार मान लो.
I don't know when was it, but God, you know, in Genesis, there is one person I would I never get tired of talking about him. That's Joseph. You know, I get so much to learn from his life.
और पूरा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है उससे मैं बहुत बहुत कुछ सोचता हूँ कब मैं सीखता हूँ उससे बहुत ही प्रोत्साहित मैं होता हूँ.
A lot of times when I get discouraged and I feel God, this situation which I'm going through, it's beyond my capacity. I do not know how to handle it.
और कई बार मुझे लगता है प्रभु जो हालात से मैं गुजर रहा हूँ कई बार प्रभु मेरी जो कैपेसिटी है मेरी योग्यता से बढ़कर मुझे नहीं समझ कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँ.
And when I read about Joseph and I see how, you know, a young man, how, you know, he's lived his life and, you know, so many difficulties that he's gone through. In spite of whatever has happened in his life and whatever people have done to him.
और जैसे मैं यूसुफ के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे वो एक जवान व्यक्ति है और कैसे वो हालातों से कैसे लोगों ने उसके विरोध में सारी चीजें की.
In spite of all that.
इसके बावजूद भी.
In spite of all the evil, in spite of all the, you know, the whatever people did to him, his own brothers sold him. He was falsely accused. He was put into prison.
और इसके बावजूद भी लोगों ने उससे उसके भाइयों ने जो कुछ भी किया उसको गड्ढे में डाल दिया उसको बेच दिया गया उसके बावजूद भी.
At the end, we read how Joseph, at the time when Joseph was a ruler, he did not take revenge on his brothers for selling him to Egypt.
और जैसे हम देखते हैं कि जैसे वो अधिकारी बन गया जाता है प्रधानमंत्री जैसे बन जाता है मिस्र का लेकिन उसके बाद भी उसने भाइयों के विरोध में कोई बदला नहीं लिया.
So there was a time when I was consumed by revenge so much that I wanted to take revenge on.
और ऐसे बहुत समय था कि बहुत ही ऐसे क्रोध में आकर मुझे बहुत ही घृणा के साथ मुझे बदला लेने का एक मन होता था.
And I was consumed by anger so much that and I wanted to take revenge so bad that I could not think of anything else.
और कई बार इतना ज्यादा मैं उस गुस्से में आकर उस बदले को लेना चाहता था उसके अलावा और कुछ मैं सोच नहीं सकता था.
But God changed my heart.
और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला मेरे हृदय को बदला.
And showed me with so many examples of examples in the Bible and how about Jesus' life when Jesus was betrayed, he was beaten up.
और परमेश्वर ने मुझे बाइबल के बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को कहानियों को बताया और यीशु मसीह के बारे में कि कैसे उसको वहां पे धोखा दिया जाता है छोड़ दिया जाता है यीशु मसीह को.
But his attitude was different. He was not, he didn't react in a human way wherein, you know, if someone has done evil to me, I will repay that person
और
with evil.
वो वहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह कभी भी एक मानवीय रूप से उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है कोई उसके विरोध में बुरा करता है तो उनके विरोध में वो कुछ नहीं करता.
I wanted to be healed but God showed me that there's you need to heal yourself. You forgive so that you get healed, not because you want to obey the Bible, but then it is for your benefit that you forgive and let go of things.
और कई बार मुझे लगता था कि मुझे बाइबल की आज्ञा का पालन करना है मुझे चंगाई चाहिए लेकिन वो माफी देने के बाद ही मुझे चंगाई मिलती वो मैंने समझा.
Today I experience a lot of peace.
और आज मुझे बहुत ही शांति अनुभव होती है.
I don't have bitterness.
और मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है.
God has changed me and in the last 3 years after coming here I've been transformed.
और परमेश्वर ने मुझे जैसे मैं यहाँ पे लास्ट पिछले 3 सालों से यहाँ पर आता हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और मुझे मैं बदल गया.
So I see that whenever we have difficulties or problems in our life.
और मैं देखता हूँ कि जहाँ कहीं हमारे जीवन के अंदर तकलीफ या समस्याएं होती है
we can either grumble, complain against God, you know, say that God, you don't love me, you're not taking care of me, you know, I don't expect this kind of result.
और ऐसे हालातों को सामना करते हम कुड़कुड़ाएंगे या शिकायत करेंगे प्रभु तू मुझे प्रेम नहीं करता मैं ऐसी परिस्थितियां हालातों की अपेक्षा तुझसे नहीं करता प्रभु.
एंड स्पेशली वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज वेयर वी वांट एवरीथिंग इज क्विक लाइक.
और आज हम ऐसे दिनों में रहते हैं जहां पे हर चीजें हमको बहुत ही जल्दी चाहिए.
सो यू वांट टॉक टू समवन यू कैन पिक अप अ फोन एंड यू कैन टॉक टू दैट पर्सन.
और यदि किसी से बात करना है किसी व्यक्ति से फोन उठाया और तुरंत बात कर लेते हैं.
सो इन द ओल्डन डेज पीपल हैड टू राइट अ लेटर एंड दैट लेटर यूज्ड टू टेक अ कपल ऑफ डेज टू रीच दैट पर्सन.
और पुराने समय के अंदर अगर किसी से बात करना लेटर लिखना पड़ता था और कुछ दिन के बाद वो लेटर वहां पहुंचता.
एंड दैट पर्सन अगेन टेक्स some amount of days to write it and send back to you.
और वही व्यक्ति जब उसमें कुछ उसको कहना है तो वही पत्र को लिखकर वो वापस भेजता.
But today if you see nobody writes, I don't know if anyone writes letters, but if you want to talk to someone, you just pick up a phone, call that person, speak to them.
मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से बात करने के लिए पत्र लिखता होगा लेकिन अगर किसी से बात करना है तुरंत फोन उठा और बात कर लेते हैं.
So we also say, you know, when we as a Christian, when we want to pray, when we pray to God and God, this is the situation in my life, I want answer from you.
और कई बार हमारे जीवन के हालातों में हम परमेश्वर से कहे, प्रभु ये हालात मेरे जीवन में, प्रभु मुझे तुझसे उत्तर चाहिए.
एंड समटाइम्स वी डोंट गेट अ रिस्पॉन्स और अ रिप्लाई इमीडिएटली.
और कई बार तुरंत हमको परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता है.
So just because God, you know, you don't get a reply immediately doesn't mean that, you know, God has not heard your cry or not heard about your request.
और इसलिए कि परमेश्वर ने हमको तुरंत उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना या पुकार को नहीं सुना है.
He's asking us to be patient. He's teaching us something through that.
और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम धीरज धरे, हमको कुछ सिखाना चाहता है.
So this was one, you know, portion of the Bible which I learned wherein, you know, how through the time of difficulty how we can have trust in God.
और यही वचन के भाग से मैंने सीखा कि उस तकलीफ के समय के अंदर कैसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं.
So there will be many trials and difficulties. It will come. It is going to keep on coming in our lives.
और बहुत सारे ऐसी संकट तकलीफें हमारे जीवन में आएंगे और बहुत आने वाले भी होंगे.
So our attitude and what how we respond to it.
और हमारा स्वभाव कैसा है कि कैसे हम उस समस्याओं को प्रतिक्रिया या उत्तर देते हैं.
यूजुअली वी रिएक्ट व्हेन समथिंग बैड हैपेंस. इट्स अ रिएक्शन ऑफ व्हाटएवर रॉन्ग हैपेंस इन आवर लाइफ.
और कई कुछ बार कुछ भी गलत होता है तो तुरंत हम क्रोध में आकर उसकी प्रतिक्रिया देते हैं.
वी डोंट थिंक अबाउट इट एंड वी, यू नो, वी डोंट रिस्पोंड लाइक, ओह, मे बी गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, मे बी देयर इज समथिंग एल्स व्हिच गॉड वांट्स in this, you know, situation in my life.
और कई बार उन हालातों के अंदर हम ये नहीं सोच पाते कि शायद परमेश्वर मेरे लिए एक अलग योजना रखता है या उसने कुछ अलग सोचा है मेरे बारे में, ये नहीं सोच पाते.
So I just want to encourage everyone to maybe, you know, whenever we face difficulties or trials in our lives, let us go back into the scripture and, you know, look at examples which we see and accordingly we can go ahead and have courage and faith that hey, God will take me through this.
मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वचन में जाए, ऐसे उदाहरणों को देखें जिससे कि हम प्रोत्साहन को प्राप्त कर सके आगे बढ़ने के लिए.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो वचन को हमने यहां पर सुना है.
Praise be to the name of the Lord for the word what we heard today just now.
सच में हमको परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है.
We have to really believe in the Lord.
उन तकलीफों में, उन समस्याओं में जब हम सामना करते हैं, सच में उस धीरज को मैं भी खो बैठता हूं कई बार.
एंड इट्स रियली लाइक इन डिफिकल्ट टाइम्स, इट इज लाइक समटाइम्स व्हेन आई आल्सो लूज माय पेशेंस.
लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, मतलब इतने सारे परमेश्वर ने हमारे सामने वचन में उदाहरण रखे. केवल वचन में नहीं लेकिन हमारे सामने कलीसिया में भी ऐसे उदाहरण को रखा है.
एंड देयर आर एग्जांपल्स एंड विटनेसेस ऑफ क्लाउड्स व्हिच आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंड देयर लॉट्स ऑफ विटनेसेस इन द बाइबल फॉर अस टू लर्न.
जो हमको निरंतर प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा अपना बनाए रखें.
एंड विच ऑलवेज एनकरेजेस अस दैट वी ऑलवेज कीप आवर फेथ स्टेडफास्ट इन द लॉर्ड.
और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे कि उस भरोसा हम उसको हर समय में, हर एक हालात में कर सके.
एंड रियली लॉर्ड हेल्प अस दैट वी ऑलवेज हैव द फेथ एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज.
पिछले दिनों में जो वचन मेरे जीवन में बहुत ही मुझे प्रोत्साहन या मुझे चुनौती दे रहा है.
एंड इन द लास्ट डेज द वर्ड्स विच गॉड स्पोक टू मी.
और ये वचन एक प्रोत्साहन के साथ साथ मैं अपने आप को जांचने का वचन भी मेरे लिए रहा है.
And this is an encouragement as well as examining myself.
और वो है यशाया उसका 51 अध्याय उसका 3 वचन.
And it is Isaiah chapter 51
verse 3 उसका तीसरा वचन.
Isaiah chapter 51 verse 3
और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा.
Over here in verse 3 it says the Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on all her ruins. He will make her deserts like Eden and wastelands like the garden of God. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and sound of singing.
और परमेश्वर इस वचन से मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का कार्य किस तरह से, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है.
And Lord was speaking to me and showing me how God's work was happening in my life.
और कैसे मुझको वो शांति देना चाहता है.
And what way he's adding peace into my life.
और वहाँ अंत में लिखा है कि वो हर्ष और आनंद और धन्यवाद कैसे मुझ में और अधिक बढ़ाना चाहता है इस नए साल में.
And how the joy and gladness has to increase, he was teaching me and showing me.
और उसके तीन वचन के शुरुआत में लिखा है कि उसके सब खंडरों को शांति दी है.
And over here he says that he has given comfort to every ruins.
और ये वचन मुझसे बहुत ही साफ रीति से बात करता है जहां परमेश्वर मुझे दिखा रहा है मेरे जीवन के खंडर जगह को.
And God was speaking to me and showing me the ruins of my area and my life.
और मुझे लगता है कि मैं कलीसिया में आता हूँ, कुछ कलीसिया में कुछ बातें मैं कर लेता हूँ, तो बहुत सारी चीजें बाहरी तौर से बहुत अच्छी दिखती होंगी.
एंड इट इज लाइक दिस, लाइक आई कम टू द चर्च एंड आई स्पीक लॉट्स ऑफ थिंग्स बट इट इज आउटवर्ड.
लेकिन हो सकता है कि मेरे जिम में बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ अब भी खंडर में देख पाता हूँ.
एंड इट कुड बी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर देयर कुड बी रुइंस इनसाइड मी.
और परमेश्वर चाहता है कि उन खंडरों को मैं परमेश्वर के सामने सच में मान लूं.
एंड वेयर गॉड वांट्स दैट आई एक्सेप्ट दैट रुइंस ऑफ माय लाइफ एंड अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स.
और जब मैं मान लूंगा उन खंडरों को, तभी मैं उसके कार्य के लिए एक शुरुआत दे सकता हूं.
एंड व्हेन आई एक्सेप्ट दैट एंड देन ओनली आई कैन अलाउ गॉड टू वर्क इन दैट एरिया ऑफ माय लाइफ.
और इसलिए परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि मेरे जीवन में कौन से ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन को आत्मिक रीति से खंडर बना रहा है.
एंड आई गॉड वाज स्पीकिंग इन व्हिच एरिया ऑफ माय स्पिरिचुअल लाइफ आई वाज रूइंग इनटू.
वो शायद आत्मिक घमंड हो सकता है.
एंड दैट कुड बी माय स्पिरिचुअल प्राइड.
बड़े ऊंचे विचार अपने बारे में रखना.
एंड थिंकिंग वेरी ग्रेट थॉट्स अबाउट माय सेल्फ.
क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में उस धीरज को नहीं रखना.
एंड गेटिंग एंग्री ऑन स्मॉल थिंग्स एंड नॉट हैविंग पेशेंस.
शायद वासना भरे विचार या नजरे को रखना.
एंड द थॉट्स व्हाट वी हैव इन एंड व्हाट वी सी अबाउट.
या किसी के बारे में कोई जलन या ईर्ष्या रखना.
एंड हैविंग दैट एंगर अबाउट अदर्स.
और मैंने कहा परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को शांति और आनंद और वहां पे लिखा है अदन के समान बनाना प्रभु चाहता है.
एंड वेयर गॉड वांट्स इट दैट मेक आवर लाइफ लाइक द गार्डन ऑफ एडन विद जॉय एंड ग्लैडनेस.
और इस बात को मैंने सीखा कि प्रभु मेरे जीवन को कभी भी अदन की वाटिका नहीं बना सकता जब तक कि मैं मेरे जीवन के खंडरों को पहचानना शुरू न करूं.
एंड गॉड विल नेवर मेक इट एज अ गार्डन ऑफ एडन अनलेस अंटिल आई फाइंड आउट माय रुइंस एंड मिस्टेक्स इन माय लाइफ.
और इसलिए मैं कहता हूं जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मुझको तू जांच, मेरे प्रतिदिन के जीवन को जांच कि आज मेरे जीवन में कौन सा खंडर रह गया. प्रभु
आई सेड टू द लॉर्ड एज डेविड सेज लॉर्ड सर्च माय हार्ट एंड मेक मी अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हिच एरिया देयर इज व्हिच आई हैव रुइंड इन माय लाइफ.
मेरे विवाहित जीवन के मेरे पत्नी के साथ के संबंध के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर मैं खंडर के समान हूं. शायद मेरा बोलना खंडर के समान हो सकता है, मेरे शब्द हो सकते हैं.
As married and with a wife and where which area there is ruins, where there is mistakes and where I could see and what is that God make me know.
And मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से उस ज्योति को, उस प्रकाश को मांगे ताकि अपने जीवन के उस खंडर, उस हालात को हम सच में देख सके और उसको पुकार सके.
एंड रियली आई एनकरेज एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड कॉल अनटू द लॉर्ड एंड अंडरस्टैंड वेयर इज दैट डार्क एरिया, वेयर इज दैट रुइंस इन आवर लाइफ टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द लॉर्ड.
हमारे वर्तमान दिखने वाले बहुत ही अच्छे ऊपरी आत्मिक या मसीह जीवन से हम संतुष्ट न रहे जहां पर आज हम हैं.
एंड इन अ प्रेजेंट लाइफ वी शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर शोइंग आउटवर्डली.
लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं सारे मेरे मुखौटे जो मास्क पहनकर प्रभु मैं मसीह जीवन जीता हूं उसको निकाल कर इस खंडर को मैं प्रभु एक्नॉलेज करना चाहता हूं मेरे जीवन में.
आई रिमूव आउट दैट मास्क व्हिच आई एम वेयरिंग इन द फ्रंट, दैट रिमूव इट आउट एंड शो दैट रुइंस एंड एक्नॉलेज दैट मिस्टेक्स इन माय लाइफ.
और जैसा मैं हूं प्रभु वैसा ही मैं तेरे सामने खड़े रहना चाहता हूं एक जरूरत के स्थान पर.
एंड एज आई एम आई वुड लाइक टू स्टैंड इन द सेम वे विद अ नीड इन माय हार्ट एंड आई कम टू यू.
और यही प्रभु है कि प्रभु उस आत्मिक उस बढ़ोतरी में मुझे लेकर जाना चाहता है.
And God wants to take in that same spiritual way and increase my faith.
लेकिन जब तक मैं अपने खंडरों को नहीं देख पाऊंगा, वो जरूरत के स्थान पर मैं अपने आप को बहुत प्रतिदिन देखना चाहता हूं, प्रभु मुझे इस खंडर के ऊपर विजय पाना है.
And I need to see that ruins of my life where I need to take every seat every day and win over it.
और यहां पर और एक अंत में एक वचन मैं कहूंगा, यूहन्ना 15 और उसका 3
Finally, one
चार
verse would end with that is John chapter 15.
चार और पांच वचन. ये वचन हम सबको पता है.
Verse 4 and 5, it's very familiar to everyone.
लेकिन एक बहुत ही अलग प्रकार से परमेश्वर ने शायद मुझे इसे प्रोत्साहित किया. इसमें लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती.
And over here when the branches when the vine is not with the branches, it cannot bear fruit.
और यही मेरे आत्मिक जीवन के लिए भी मैं लेना चाहता हूँ कि प्रभु मैं एक मसीही जीवन से संतुष्ट नहीं होना चाहता कि मैं तुझको जानता हूँ, मैं वचन को सीख लिया है, मैं कलीसिया में जाता हूँ.
I just don't want to be outwardly happy that I'm going to the church and I know you. Not happy in that manner.
लेकिन निरंतर तुझमें बने रहने के अनुभव से कभी मैं पीछे नहीं हटना चाहता प्रभु.
But continuously being abiding in you and I want to be in that.
और तभी मैं तो फल ला सकूंगा, तभी मैं मसीह का जीवन सच में जी पाऊंगा मैं.
एंड देन ओनली आई कैन बेयर फ्रूट्स एंड शो द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन मी.
और पांच वचन में लिखा है
एंड वर्स 5
मुझ में बना रहता है और उसमें वो बहुत फल, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते.
दिस इज विदाउट यू यू कैन नॉट बेयर फ्रूट्स एट ऑल और नीड टू अबाइड इन मी.
और इसको मैं इस तरह से लेता हूं कि मैं आत्मिक जीवन में प्रगति तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं उसमें बना ना रहूं.
एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ आई कैन नॉट बेयर फ्रूट अनलेस अंटिल आई अबाइड इन क्राइस्ट एंड आई डोंट बी इन.
और मैं कैसे उसमें बना रह सकता
हूं? हाउ कैन आई अबाइड एंड आई बी इन दैट?
जब तक मैं मेरे खंडरों को नहीं जानूंगा.
अनलेस अंटिल आई अंडरस्टैंड माय रुइंस इन माय लाइफ एंड माय मिस्टेक्स इन माय लाइफ.
मेरे व्यक्तिगत, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया के अंदर.
And my personal life and my family life and my church life.
पवित्र आत्मा मेरी हम सबों की सहायता करे कि उस खंडरों को हम प्रतिदिन और भी अधिक अधिक अदन के समान बनते हुए देखने पाए.
And Holy Spirit help us to understand that mistakes and the ruins in our life and where we grow more and more.
और मेरा विवाह जो है, मेरा जो मैरिज जो है, वो प्रतिदिन उस खंडर से आगे बढ़कर और भी और स्वर्गीय अनुभव जहां अदन की वाटिका परमेश्वर मिलने आता है वैसे बन सके प्रतिदिन.
And even the marriage life comes to the Eden garden life experience where it grows more and more close in the Lord.
और मैं इसको एक चुनौती के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देखता हूं कि परमेश्वर मुझको सच में अदन की वाटिका बनाना चाहता है.
And I take it as a challenge that where God is helping me to turn it to
और
Eden's garden.
शांति, हर्ष, आनंद, क्या-क्या उसने नहीं कहा, वो सब कुछ वो मुझे भरना चाहता है.
And he wants to give that joy and peace and everything he wants to give it to us.
यही हम सबों के लिए कलीसिया के रूप में एक प्रोत्साहन है, एक चुनौती है.
And this is the encouragement to the church and a personal way also.
कि हम कभी भी हमारे उस खंडर जीवन के साथ कभी भी प्रोत्साह या उसके समझौता करके उसी से संतुष्ट न रहे.
And never be compromised with what we are living with.
प्रभु हम सबों की सहायता करे ताकि हम अदन की वाटिका के समान प्रतिदिन बन सके.
Lord help us that we live as the Eden, as a garden of Eden.
प्रभु हम सबको आशीष दे.
Lord help us and bless us.
I praise God for this day.
परमेश्वर नाम का धन्यवाद हो.
Just quickly I want to share something which I learned this week.
और जो मैंने इस हफ्ते में सीखा उस चीज को मैं बांटना चाहता हूँ.
एंड एज अ यंग बॉय गॉड इज टीचिंग व्हेन यू विलिंग टू लर्न समथिंग व्हेन यू कम इनटू द यू नो.
और जैसा जवान के रूप में परमेश्वर सिखाना चाहता है.
व्हेन यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड.
और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं.
सो फ्यू थिंग्स व्हिच आई वाज यू नो लर्निंग इन जोशुआ चैप्टर 7.
और कुछ बातें मैं योशुआ की पुस्तक से सीखा और परमेश्वर सिखाया.
We know that you know Joshua chapter 6 when Israel people got a victory over Jericho.
और हम जाते हैं कि जहाँ पे इसराइलियों को वो लोगों ने जेरियो से जेरियो के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया.
So God told that one thing that every bronze, gold, silver should come into the treasury of God that should be consecrated to the Lord.
और वहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि सब कुछ जो वहाँ पे जो आप लोग पाते हो वो पवित्र होना चाहिए और वो परमेश्वर के भवन में आना है.
चैप्टर 7 वर्स स्टार्टेड विद बट द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कमिटेड अ ट्रेसपास रिगार्डिंग द अकर्स्ड थिंग.
और फिर हम देखते हैं कि वो लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया था.
सो द चैप्टर 7 स्टार्ट विद बट आई मीन दैट इज अ वन थिंग दे गॉट डिफीटेड एट आई.
और फिर हम देखते हैं कि वहां पे वो लोग हार गए थे.
एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अकर्स्ड थिंग. वन इज अ फॉरबिडन थिंग दे टुक.
और वो जो चीज नहीं लेना था उस चीज को वो लोगों ने लिया. और वहां पे हम देखते हैं
एंड इट व्हेन अकान द सन ऑफ चार्मी व्हेन ही टुक द अकर्स्ड थिंग सो एंगर ऑफ द लॉर्ड बर्न अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल.
और जो चीज नहीं लेना था हम देखते हैं अकान ने उस चीज को उठाया था तभी परमेश्वर का कोप उनके ऊपर आ गया था.
वर्स 10 सेज दैट when Lord said to Joshua, get up, why do you lie thus on your face? Israel had sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them.
वहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि इज़राइल ने मेरा 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 आज्ञा का उल्लंघन किया है और उल्लंघन किया है.
When I was reading, taking help of one commentary and the book, so
जब मैं इसको पढ़ रहा था एक पुस्तक के सहायता लेकर के.
So I learned one thing that whenever God told that Israel has sinned.
और जब भी कभी परमेश्वर ने बोला कि इज़राइल ने पाप किया है.
Though one man or one family has sinned, like Achan had sinned, but God never told that Achan had sinned. God told that Israel had sinned.
और जैसे कि एक व्यक्ति या कोई पाप करता है वहां पे पूरा झुंड को ले लेता है. वहां पे परमेश्वर ने कहा कि अकान ने नहीं पाप किया लेकिन ये बताया कि इज़राइल ने पाप किया है.
I think that is a one thing, you know, as a part of local body in a church, God individual believers' life determine the, you know, victory of the church.
और हम ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है पूरा कलीसिया को कलीसिया का विजय के ऊपर नियुक्ति हो जाता है.
मतलब as a young boy, if I am not, you know, struggling some personal sin in my life, then I can't worship in the church, and definitely it is a defeat of the whole church. God will say, my people have sinned.
और जैसे कि एक युवा होने के नाते मैं पाप में रह करके यहाँ पे मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा पाप जो है पूरा कलीसिया के ऊपर आ सकता है.
So God is, God want to say that my church has sinned.
और फिर
My church has sinned because of one man.
और फिर ऐसा परमेश्वर कहेगा कि एक मनुष्य के कारण मेरा जो कलीसिया है वो पाप किया है. ऐसा ऐसा परमेश्वर कहेगा.
The individual life, the relationship, my relationship with God, my devotion with God is, you know, really important.
और मेरा व्यक्तिगत संबंध और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही जरूरी है.
And because only that can prove that I am a real disciple of God, and then only I can worship God with my with pure conscience.
और यही चीज साबित करेगा कि मैं एक परमेश्वर का चेला हूँ, और वो जीवन जो है वो ही बताएगा कि मैं परमेश्वर का एक सच्चा भक्त हूँ.
And God has written one word to young people also in 1 John 2:14.
और एक और जो युवाओं के लिए एक एक वचन परमेश्वर ने लिखा है पहला योहना में पहला योहना 2:14.
I have written to you young men. Because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. I think that is a one way which, you know, Bible says in Psalm 66 that if I regard iniquity in my heart, some, you know, accursed thing in my heart, God will never hear my prayer.
और अगर परमेश्वर ये कहता है, भजन साहब में पढ़ सकते हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ चीज मैंने रखा हुआ है तो परमेश्वर वो मेरा प्रार्थना को नहीं सुन सकता.
I was, you know, praying for my marriage and God was telling me something like that, first, you know, clear out the things which is in your heart, make your vessel clean and, you know, just pray and let God allow in your heart to do.
और जैसे भाई का शादी के लिए वो तैयारी और उसके लिए वो तैयार हो रहे हैं, तो तभी परमेश्वर ये बात किया कि तुम्हारे जो पात्र को साफ करो और अपने आप को साफ रखो.
God will definitely hear your prayer when you remove the iniquity in you.
और जब हम हमारे पाप को साफ करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, और जरूर परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है.
The last thing in verse 21 says, when Achan confessed his sin, he told that I saw among the spoils a beautiful Babylon's garment, 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels. I coveted them and took them, and there they are hidden in the earth in the midst of my tent. With the silver under it.
और वहां पे हम अकान को देखते हैं कि अंगीकार करता है कि मैंने पाप किया है, मैंने उन चीजों को जो मेरे आंखों के सामने अच्छा था, अच्छा लगा, और वहां पे काफी कुछ था वो मैंने उठा लिया.
I think sin always start with eyes. Sin always start with eyes.
और हम देखते हैं कि पाप जो है आंखों से शुरुआत होता है.
When something which is pleasant to my heart, I covered them, I took them and I put in my heart, in my, you know, with me.
और जो मुझे मैं जो देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, फिर वो हृदय में चला जाता है, फिर मैं उसे उसके उसके विरुद्ध में पाप करता हूँ, उसको मैं लेके चलता हूँ.
आई थिंक चिल्ड्रन स्टोरी द सेम, यू नो, द कंक्लूजन वी सॉ दैट वेयर योर हार्ट इज, वेयर योर ट्रेजर इज, देयर योर हार्ट विल बी.
और हमने बच्चों की कहानी में भी सुना था, जहाँ पे तुम्हारा जहाँ संपत्ति है, धन है, वहाँ पे हृदय है.
सो आई एज ए यंग बॉय आई वांट टू सी दैट इज एनीथिंग समथिंग, यू नो, व्हिच इज सिनफुल इन माय eyes, you know, which comes in my eyes at a temptation which I, you know, which is pleasant to me, and because of that I grieve the spirit of God.
और जैसा ही युवा होने के नाते मैं उस चीज को नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने और मेरे मन के अंदर नहीं भरे.
सो वॉट आई हैव टू डू, द बाइबल सेज इन वर्स 25, दे बर्न हिम एंड हिज फैमिली.
और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उसको जलाया वहां पे.
So I think I have to do the same with my sin. I have to burn it in the presence of Lord. And I just want to, you know, die for that sin.
और मैं पाप के साथ वही करना है, मुझे उसे जलाना है और उसके लिए मुझे मरना है.
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करें.
इब्रानी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ.
Thank the name of the Lord.
इब्रानियों 12 में से मैं पढ़ना चाहती हूँ.
I want to read from Hebrews chapter 12.
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है, वर्स वन, 1:2 इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा.
Verse 1 and 2 of Hebrews chapter 12, we read it like this. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance and race marked out for us. Fix our eyes onto Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God.
पिछले कुछ दिनों से प्रभु ने दिखाया कि मेरे लाइफ में कौन सी ऐसा उलझाने वाली बातें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच में मुझे रोक रही हैं जो उस दौड़ में दौड़ने से.
In the last days, God was showing me where I'm faltering and where I'm not able to run in this race.
और वो था चिंता करना, anxiety.
And that was worries and anxiety.
प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं बहुत सारी जैसे इसमें लिखा है कि setting your mind and look unto Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है.
Setting our mind and looking unto Jesus.
पर मैं देख रही थी कि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारी unnecessary बातों पर अपने मन को लगा रही थी.
And last days I was just saying that I was putting my heart on unwanted, unnecessary things.
मेरे ऑफिस में या मेरी पर्सनल लाइफ में जो बहुत ही छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी नहीं है, बट अननेसेसरी मैं उन चीजों की ओर अपने मन को लगा रही थी.
There were small things which were unnecessary. I was putting my heart and mind onto that.
और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, चिंता में थी.
I was very much worried about it and thinking about it.
और बाइबल में साफ लिखा है फिलिपियो 4:6 में डू नॉट बी किसी भी बात की चिंता मत करो.
एंड इन फिलिपियन 4:6 इट इज सो रिटन लाइक नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग.
बट मैं बार बार देख रही थी कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए चिंता कर रही हूँ.
एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई वाज वरीड अबाउट लिटिल लिटिल थिंग्स.
और ये चिंता जो है वो बाइबल में लिखा है कि बाइबल में जब प्रभु की आज्ञा की किसी बात की चिंता नहीं करना तो ये चिंता करके मैं बार बार प्रभु की आज्ञा को तोड़ रही थी मेरी लाइफ में.
एंड एज वर्ड सेज दैट नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग बट बाय वरिंग आई वाज ब्रेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स.
और बार बार चिंताएं करके या किसी भी चीज का बोझ अपने ऊपर लेकर मैं प्रभु पर अविश्वास दिखा रही थी.
एंड बाय टेकिंग वरीज ऑन माय सेल्फ आई वाज बिल्डिंग इन अनबिलीफ इनसाइड मी.
और बार बार मैं उस ऑलमाइटी गॉड को बहुत छोटा कर रही थी मेरी लाइफ में.
एंड बाय डूइंग दिस आई वाज मेकिंग माय बिग ऑलमाइटी गॉड मेकिंग हिम स्मॉलर.
और वो चिंताएं मेरे जीवन में ग्लूमी उदासी को और अनबिलीफ को लेकर आ रही थी.
एंड दैट प्रॉब्लम्स एंड दैट वरीज ब्रॉट मी डाउन एंड मेड मी सैड.
एंड आई और मैं ऐसे समय टाइम पर भी आई जब मैं कुछ चीजों के लिए मैं ग्रम्बल आई कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया मैंने.
एंड देन आई स्टार्टेड ग्रम्बलिंग ओवर दैट.
तो मैंने देखा कि कैसे एक छोटी एंजाइटी वो चिंता का बीच कैसे मुझे आगे 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 और गिराता जा रहा था.
एंड दैट लिटिल वरी हाउ इट टेक्स मी मोर फर्दर 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 डाउन.
प्रभु में के वचन में जो ये आज्ञा दी गई है ये सिर्फ शायद मैंने कभी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जो लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो.
आई हैव नेवर टेकन इट सो सीरियसली दैट एज इट इज रिटन दैट नेवर टू वरी अबाउट एनीथिंग इन लाइफ.
जैसे हम आज चिल्ड्रन स्टोरी में भी देखा कि जो वचन था कि किसी भी बात की चिंता मत करो पर धन्यवाद और धन्यवाद प्रार्थना अपनी सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख लेकर आओ. As we saw in the
children's story also that not to worry about anything but to pray and to believe in the Lord.
बट मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी.
I was not able to do that.
और मेरे माइंड को अननेसेसरी बातों पर लगा रही थी.
And as I was setting my mind on unwanted and unnecessary things.
और वो सारी चीजें मेरे पीस को मेरे मुझसे दूर कर रहे थे और मैं परेशान सी हो रही थी.
And this whole thing was taking away my peace and I was getting away from the Lord.
और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी Isaiah 26:3
and verse Isaiah chapter
26:3
Isaiah chapter 26 verse 3.
NLT version में बहुत अच्छा लिखा हुआ है. You will keep in perfect peace all who trust in you, whose thoughts are fixed on you. इसमें लिखा है कि जो तुझ पर विश्वास करते हैं उनको तू अपनी परफेक्ट शांति से भरता है, उनको जो अपने विचारों को तुझ पर लगाते हैं. तो मैं देख पा रही थी कि मैं अपने विचारों को परमेश्वर की बजाय अननेसेसरी बातों पर लगा रही थी, इसलिए मेरे मन की जो शांति थी वो दूर हो रही थी और मैं परेशान सी हो रही थी.
I was putting my thoughts and worries instead of putting it on the Lord, I was worrying about it and as I was getting away from the Lord.
जैसा इब्रानियों 12 में लिखा है कि यीशु मसीह की ओर ताकते रहो.
And as it is written that we need to look forward to the to Lord Jesus Christ and go forward.
हम लोग भी कई बार यीशु मसीह की तरफ देखने की बजाय आंधी तूफानों की तरफ देखते हैं और डूबने लग जाते हैं.
And instead of looking at Lord Jesus Christ, we look at the problems and storms in life. And we start falling down.
मैं भी ऐसे टाइम पे आ गई कि मैं बिल्कुल एकदम टूट गई.
And it came to a point where I was totally broken down.
And I just cried to Lord that Lord please help me Lord, only you can take me out from this storm Lord. और मैंने बस प्रभु से प्रार्थना किया और सच में प्रभु ने का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसी चीजों को हमारे जीवन में अलाउ करता है ताकि हम देख पाए कि कैसे एक छोटा सा बीज चिंता का या छोटी सी बातों के लिए किसी भी चीज को जो परमेश्वर की आज्ञा उसको सीरियसली ना लेने की वजह से कैसे हम एक स्टेप फर्दर फर्दर और फर्दर गिरते जाते हैं.
एंड व्हेन वी डोंट टेक थिंग्स व्हेन वी दैट लिटिल प्रॉब्लम रियली पुट्स अस डाउन फर्दर एंड फर्दर.
और मुझे मैंने देखा कि जब हम पूरी तरीके से गॉड को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करते, होली स्पिरिट को हमारे हर एक लाइफ के हर एक एरिया में पूरी तरीके से कंट्रोल जब हम नहीं देते हैं,
एंड व्हेन वी आर नॉट अलाउइंग द होली स्पिरिट टू टेक कंट्रोल ओवर आवर लाइफ,
और हम खुद ही वो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं,
एंड वी ट्राई टू टेक कंट्रोल ओवर दैट,
तो हम डूबते ही हैं,
एंड देन वी स्टार्ट फॉलिंग डाउन.
तो बहुत जरूरी है जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम एक छोटे बालक के समान नहीं बनोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते.
As long as you do not become a small child and seek the kingdom of God, you cannot enter into the kingdom of God.
और छोटे बच्चे कभी किसी बात की टेंशन नहीं लेते. शायद यूनिस को अगर हम देखें उससे भी छोटा बच्चा ग्रेस, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी भी बात की टेंशन लेती होगी.
एंड स्मॉल चाइल्ड्स नेवर वरी अबाउट एनीथिंग लाइक यूनिस एंड ग्रेस. They don't worry about anything.
मुझे सच में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे उस छोटे बच्चे की तरह बनना है जो टोटल ट्रस्ट अपने पिता पर रखता है.
I pray like that I have a mind like the child where I totally trust on the Lord my father.
ताकि कोई भी चाहे कितने बड़े आंधी तूफान हो या छोटी सी भी कोई बात हो, प्रभु मुझे एक पर्सन भी प्रभु वो मुझे हिला ना सके.
Let whatever type of storm come into my life, not even one person should shake my life.
और एक बहुत अच्छा प्रॉमिस वर्स है Psalm 125:1-2.
And Psalms 125:1-2, there is a promise we can read.
मैं LNT version से पढ़ना चाहूंगी. बहुत अच्छा लिखा हुआ है. Those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. They will not be defeated, but will endure forever. Just as the mountains surround and protect Jerusalem, so the Lord protect us and surround His people now, both now and forever. तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे यरूशलेम के चार ओर पहाड़ है, उन्हें घेर रखा है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को घेरता है और उनकी रक्षा करता है, ना सिर्फ अभी बल्कि हमेशा के लिए.
Over here it says that the Lord as the mountains are surrounded surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people both now and forever.
तो जब हमारे पास ऐसा परमेश्वर है तो हमें किस बात की चिंता. तो मैं चाहती हूँ कि प्रभु का वायदा है और हम देखते हैं पौलुस की जिंदगी से कि कैसे उसने वो जेल में है और उसके बाद भी वो ये वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो.
And we see that we have the Lord with us, and we see about Paul also where he is in the prison and where he receives the promise and he's not worried about anything.
तो हम क्यों नहीं उस तरह की जिंदगी जी सकते हैं जहाँ हम हर एक टेंशन से हर एक एंजाइटी से फ्री होकर हमेशा आनंदित रह सके.
And where we also live a life without any worries and be happy in the Lord.
मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सब की मदद करे कि सच में हम एंजाइटी फ्री, टेंशन फ्री और एकदम परफेक्ट ट्रस्ट की जिंदगी प्रभु के साथ जी सके.
I pray like this that God help us to live without worries and without any anxiety.
प्रभु आप सबको आशीष.
Lord bless us.
Actually didn't prepare for today to share anything.
और मैं कुछ तैयारी करके नहीं आ पाया आज यहाँ.
But Johnny had shared this verse in 1 John 4:8. 4, chapter 4, verse 11, I guess. 1 John chapter 4, verse 11.
पहला योहना चौथा अध्याय उसका 11 वचन.
That was displayed on the screen.
और जो डिस्प्ले किया गया था स्क्रीन के ऊपर.
It reads like, since God loved us, we ought to love each other.
प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए.
So I thought of sharing something which I had in my mind.
और जो मेरे मन में था उसमें बांटना चाहता हूँ.
So let's turn our Bible to the book of Revelations.
और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
चैप्टर 2
उसका दूसरा अध्याय
वर्स 2 एंड 3
उसका दूसरा और तीसरा वचन.
Here Jesus Christ speaks to the church of Ephesus.
और यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया से यीशु मसीह बातें करता है.
He says this.
वो यहाँ पे कहता है इस प्रकार.
I know your deeds.
मैं तेरे काम को जानता हूँ.
Your hard work and your perseverance.
तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ.
I know that you cannot tolerate wicked people.
मैं ये भी जानता हूँ तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता.
That you have tested those who claim to be apostles but are not.
और जो अपने आप को प्रेरित कहते और नहीं है.
And have found them false.
और उनको परख कर झूठा पाता है.
You have persevered and have endured hardships for my name.
तो धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है.
And have not grown weary.
और तू थका नहीं है.
Yet I hold this against you.
पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है.
You have forsaken the love you had at first.
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है.
And at the end he warns the church saying that if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.
और यहाँ पे वो कहता है कि अंत में वो पांच वचन के अंत में यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा.
So, when the word lampstand comes, we see in first chapter Revelations. It says lampstand is nothing but the church.
और यहाँ पर जो दीवट के बारे में पहले अध्याय में लिखा है कि वो कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है.
Ephesus is a place in the present day Turkey.
और Ephesus जो वो जगह है जो आज के अभी के समय में तुर्की जो जगह है.
And if one goes to Ephesus today and if he searches for a church, he would not be able to find a church.
और वहाँ पर अगर कोई जाएगा और कलीसिया को ढूंढेगा तो नहीं ढूंढ पाएगा.
Okay. So this Jesus says. Christ says that you have forsaken the love which you had at first.
और यीशु मसीह उनसे कहता है Ephesus कि जो पहले कैसा प्रेम जो तुझे था वो तूने छोड़ दिया है.
This reminds me of an incident which happened long back when Saul was traveling to Damascus.
और ये घटना को मुझे याद दिलाता है जब Saul जो है दमस्कस के रास्ते पर चल रहा था.
Jesus encounters him.
और यीशु मसीह उसको प्रकट होता है.
एंड ही सेज व्हाई आर यू पर्सिक्यूटिंग मी.
और वो Saul से कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है.
वी सी दैट इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8. या चैप्टर 8 चैप्टर 9 वाज 4
नौकाचार.
सो हियर पॉल Saul हैड द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग द.
और यहाँ पर शाउल जो है जो यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको सताने के लिए वो दमस्कस को जा रहा था.
So he has plans to persecute the Christians.
और मसीह जो लोग हैं उनको सताने की उसकी योजना बनाई थी.
But what Jesus says is something very interesting.
और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा यीशु मसीह कहता है यहाँ पर.
He doesn't say why you persecuting my people.
और ये नहीं कहता तू मेरे लोगों को क्यों सताता है.
Or he doesn't say why you persecuting my disciples.
और तू मेरे चेलों को क्यों सताता ऐसा नहीं कहता.
He makes it very clear that why are you persecuting me.
और बहुत साफ रीति से कहता है शाउल है शाउल तू मुझे क्यों सताता है.
I guess when going back to Revelation chapter 2.
जब मैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में जाता हूँ.
When I read the church at Ephesus.
और मैं Ephesus की कलीसिया के बारे में पढ़ता हूँ.
This church was very rich in doctrines.
और बहुत ही जो सिद्धांतों के अंदर बहुत ही एक धनी ऐसा एक कलीसिया ये है.
We see that they had endured hardships for the name of Christ.
और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम के लिए उन्होंने बहुत ही यातनाओं को सहा है.
And they were very smart in finding out who is false prophet.
और झूठे जो भविष्यद्वक्ता होते थे उनको परखने के लिए बहुत ही चतुर ये लोग थे.
But something which they lacked was the love.
लेकिन एक चीज की घटी उनमें थी वो है प्रेम.
That was the love between the fellowship.
और वही जो प्रेम है जो संगति से है.
That is what Christ means when he says the love.
और वही यीशु मसीह प्रेम के बारे में कहता है.
The church in this Ephesus actually loved Jesus. in a very superficial way.
और यहाँ पे विशेष की कलीसिया जो बनावटी रूप में यीशु मसीह से प्रेम करती है.
But I guess they didn't have that love between themselves, the internal church bonding, the love. What we all speak, that was lacking in this church.
लेकिन हम जो यहाँ पे प्रेम की बातें बारे में बात करते, वो प्रेम इन कलीसिया के लोग जो एफिसस में थे, उनके अंदर उनकी कमी थी.
And church and Jesus clearly warns the church that he will take away the lampstand from its place.
और यीशु मसीह चेतावनी देता है कि वो उनके बीच में से उस दीवट को निकाल देगा.
And it means he will take away the church.
इसका मतलब वो कलीसिया को वहाँ से ले लेगा.
So what I understand is the love, though I can be rich in, though I can meditate on his words and I can get to know what the scripture says, and if I lack something in loving my brothers and sisters in the church, it's all vain.
और हो सकता है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, सिद्धांतों को पढ़ने में बहुत आगे, लेकिन अगर मेरे जो कलीसिया में भाई बहन उनको प्रेम करने में अगर मेरे अंदर वो कमी रह जाती है,
if I look onto a brother or a sister in the church down, and Jesus would say me like, why are you looking down on me?
और यदि मैं किसी कलीसिया में भाई और बहन को मैं नीचे देखता हूँ और फिर मैं कहूंगा यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों तू मुझको नीचे देख रहा है.
If I ignore a brother or a sister, or if I, even though I find him in a state wherein he needs help, Jesus would say, why are you ignoring me?
और यदि हमारे कलीसिया के अंदर भाई या बहन किसी को मदद की जरूरत है, उसको नजरअंदाज कर रहे, तो परमेश्वर यीशु कहेगा कि तू मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा है.
And, I would like to read the verse from 1 Peter chapter 4 verse 8.
Pehla Patras chautha adhyay.
It says above all love each other because love covers a multitude of sins.
Aur yahan pe likha hai shreshth baat ye hai ki ek dusre se adhik prem rakho kyunki prem anek paapon ko dhaap deta hai.
May God bless us.
Prabhu hame aashish de.
It was really encouraging to hear all of them.
Aur sare logo ko sunna bahut hi protsahan dene wala tha.
There's this verse in 1 Thessalonians chapter 5 verse 24.
Pehla Thessalonians ki 5 adhyay uska 24 vachan.
It says, faithful is he who calls you and he also will bring it to pass.
Tumhara bulane wala sachcha hai, woh aisa hi karega.
So this verse really blessed my heart.
Aur is vachan ne mujhe bahut aashish diya.
We did this study during the week.
Aur pichle saptah mein humne Bible adhyayan kiya.
And this verse has just been coming to my mind every day.
और प्रतिदिन ये वचन जो है मेरे मन में आ रहा है.
It says, faithful is he who calls you.
और जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है.
That means God is faithful.
इसका मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है.
And he will bring it to pass. He will get it done.
और वो ही उसको पूरा करेगा, उसको संपूर्ण करेगा.
And what he will get it done is in the previous verse.
और उसके अगले उसके पहले वचन के अंदर वो क्या वो पूरा करेगा वो लिखा है.
It says that he himself will sanctify you entirely. That is make you holy.
और लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा.
And may your spirit, soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus.
और तुम्हारी आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे.
So he has said it and he will do it.
और उसने ऐसा कहा और वही उसको पूरा करेगा.
Our part in it is only to trust him.
और हमारा जो भाग है केवल उस पर भरोसा करना है.
But that's a part where we fail the most.
और यही जो भाग है वहीं पर हम असफल हो जाते हैं.
Is trusting him.
उसके ऊपर भरोसा रखने में.
Whenever trials and temptation come our way, you know, we fail.
और कई बार हमारे जो तकलीफ और परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं हम असफल हो जाते हैं.
But that not be the case.
और लेकिन ऐसा न होने पाए.
We can trust him, we can cry out to him.
और हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं.
And he will bring us to pass.
और वही हमें उसमें से बाहर निकाल उसको पूरा करेगा.
In James it says, consider joy my brethren that you encounter various trials.
और याकूब के अंदर वो लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जाए तो आप उसको आनंद की बात समझो.
So the trials and temptations come across our way to make us like him.
और कई बार ये परीक्षाएं जो है ये तकलीफ जो हमारे रास्ते में इसलिए आती है ताकि उसके द्वारा हम उसके समान यीशु के समान बन सके.
If there is no testing of me done, I will never become like something.
और यदि मेरी परीक्षा नहीं होती किसी क्षेत्र के अंदर तो मैं उसके समान नहीं बन पाऊंगा कभी.
Exactly. So in the same way we are called to become like Jesus Christ.
और उसी प्रकार हम यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं.
Hence we are tested in so many ways that you know we trust God to make us like him.
और इसलिए बहुत सारी चीजों से हमारी परीक्षा होती ताकि हम उसके ऊपर भरोसा रख सके उसके समान बनने के लिए.
A verse that blessed me was in Jude 24.
और यहूदा उसका 24 अध्याय.
It says, now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy.
aur ab jo tumhe thokar khane se bacha sakta hai aur apni mahima ki bharpuri ke samne magan aur nirdosh karke khada kar sakta hai.
Now I got to really trust this verse and say, God, you are really able to keep me from stumbling.
aur mujhe is vachan par bharosa rakhna hai, prabhu tu sach mein mujhe thokar khane se bacha sakta hai.
The problem what happens is, you know, I start trusting myself.
aur samasya ye aati hai ki main apne aap par bharosa rakhna aarambh kar deta hu.
It's when I am weak, then I am strong.
aur jab main कमजोर होता हूं तब वो मैं सामर्थ्य बन जाता हूं.
When I am weak, then I allow God to, you know, give his Holy Spirit to me and make me stronger.
और जब मैं निर्बल होता हूं मैं परमेश्वर को अनुमति देता हूं उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य बनाने के लिए.
आमीन.